नंदिनी उदय को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रही थी और उदय ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या? नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाया और तभी उदय बेड पर लेट गया। उसने अपना हाथ फैलाकर नंदिनी को अपने हाथ पर लेटने का इशारा किया। नंदिनी चुपचाप उसके बगल में आकर लेट गई। नंदिनी का हाथ उदय के चेस्ट पर था और उदय ने नंदिनी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको पता है, हम अब बस इतना चाहते हैं कि हमारी इप्शी की लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ना आए और वो राजवंशी परिवार में अच्छे से सेटल हो जाए। नंदिनी उसकी बात सुनकर बोली, और हम तो ये चाहते हैं कि अभिमन्यु की मांसा इप्शी को मॉडलिंग के लिए मना ना करें। उदय ने कहा, हमें अभिमन्यु पर पूरा भरोसा है, वो अपनी मांसा को मना लेंगे। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई होप सो। इतना बोलकर नंदिनी उदय के करीब जाकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उदय उसे ऐसा करते देखकर मुस्कुराया। नंदिनी चाह रही थी कि उदय खुद उसके करीब आए, लेकिन उदय इस टाइम शायद इप्शिता और अभिमन्यु के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने नंदिनी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके सिर पर हल्के से अपना हाथ फेरा और उसके माथे को चूमकर अपनी बाहों में भर लिया। नंदिनी अभी उदय की तरफ बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन जब उदय ने उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लीं तो नंदिनी ने अपने मन में कहा, ओ गॉड उदय, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप हैं कि हमें सुला रहे हैं। नंदिनी इतना बोलकर अपनी आईज रोल करते हुए बोली, क्या ही करें हम, अगर हम खुद उदय से अभी कुछ बोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा डेस्परेट लगेगा। नहीं नहीं, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, अभी हम उनके इतना करीब उनकी बाहों में हैं, यही हमारे लिए बहुत है और हम इसी में खुश हैं। इतना बोलकर नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ इप्शिता अभिमन्यु के साथ डिनर करने के बाद चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ गई और अभिमन्यु इप्शिता के सामने आकर बैठते हुए बोला, वैसे इप्शिता, आज एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकल हमारी फर्स्ट नाइट है, तो क्या हम आज की नाइट को कुछ स्पेशल नहीं बना सकते? अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्शिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अभिमन्यु की इस बात का क्या जवाब दे। उसने अपने मन में कहा, अब हम क्या कहें अभिमन्यु से। इतना बोलकर उसने अपनी नजरें अभिमन्यु से चुरा ली। तभी अभिमन्यु इप्शिता के बिल्कुल करीब आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारी बात का जवाब दीजिए। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली हम। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसके करीब आकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। इप्शिता कुछ बोल ही नहीं पाई और अभिमन्यु के हाथ इप्शिता की कमर में गए। उसने इप्शिता को अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। इप्शिता अभिमन्यु की किस को महसूस करके थोड़ा सा हिचकिचाई, पर वो अभिमन्यु का किस करने में उसका साथ देना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस ब्लश कर रही थी। अभिमन्यु ने उसे बड़े ही सॉफ्टली किस किया और उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, हो गई हमारी फर्स्ट नाइट स्पेशल। इतना बोलकर अभिमन्यु मुस्कुराया और इप्शिता कंफ्यूज होते हुए बोली, सीरियसली? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप अपने बेड पर आराम से लेट गया। इप्शिता उसे इस तरह लेटते हुए देखकर मुस्कुराई और वो भी उसके बगल में आकर लेट गई। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे की तरफ थे। तभी अभिमन्यु इप्शिता के बिल्कुल करीब आया और उसने अपना हाथ इप्शिता के चेहरे के पास रखा। इप्शिता ने अपना सिर उठाया और अभिमन्यु के हाथ पर अपना सिर रख दिया। अभिमन्यु ने इप्शिता को बिल्कुल अपने करीब खींचा और उसने इप्शिता के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको क्या लगता है हम आपको परेशान करेंगे, वो भी इतनी थकावट में? बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम तो जानते ही हैं कि आप हमारी हैं, तो फिर हमें किसी चीज की जल्दी नहीं है। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर कंफर्टेबल महसूस किया और बिल्कुल उसके करीब आकर लेट गई। वो दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे। अभिमन्यु ने इप्शिता को अपनी ओर और नजदीक खींचा। इप्शिता का सिर अभिमन्यु के सीने के पास था और उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। इप्शिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने उसके माथे पर किस किया और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बड़े ही सुकून के साथ सो गए। अगले दिन सुबह अभिमन्यु की आंख खुली और इप्शिता सो रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और अभिमन्यु ने बड़े प्यार से उसके बालों को समेटा और उसके माथे को किस किया। अभिमन्यु की किस को महसूस करके इप्शिता थोड़ा सा कसमसाई और दोबारा सो गई। अभिमन्यु ने उसे नींद से नहीं जगाया और उसे वैसे ही सोने दिया। अभिमन्यु के जाने के बाद इप्शिता ने अपनी आंखें खोली और वो अभिमन्यु के किस को याद करके मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया था और इप्शिता वहीं चुपचाप लेटी रही। थोड़ी ही देर में अभिमन्यु वापस आया और इप्शिता अभी भी चुपचाप लेटी हुई थी। अभिमन्यु के बालों से पानी टपक रहा था। वो अपने बालों को सुखाने जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इप्शिता पर गई। जो अभी भी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। अभिमन्यु उसके बगल में आया और उसने अपने बालों को झटका। उसके बालों से गिरने वाला पानी इप्सिता के चेहरे पर पड़ा और इप्सिता ने अपने चेहरे के आगे अपना हाथ लगाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप अभिमन्यु? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको उठाने की कोशिश, चलिए उठिए, गुड मॉर्निंग। और कितनी देर सोएंगी? वैसे भी आज बहुत सारे काम करने हैं। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उठकर बैठी और उसने कहा, काम? कैसा काम? अभिमन्यु ने कहा, उठिए, रेडी हो जाइए, आपको अपनी कल रिसेप्शन में पहनने वाले कपड़े और ज्वेलरीज ट्राई करनी है। हमने सब कुछ यहीं पर बुला लिया है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी रेडी तो होना पड़ेगा ना, इसलिए चलिए फटाफट से उठिए और रेडी हो जाइए, थोड़ी देर में अर्पिता यहाँ आती होगी। इप्सिता उसकी ये बात सुनकर उठकर बैठी और उसने अपने बालों की क्लिप लगाते हुए कहा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था, वरना हम तो इतनी देर से जाग रहे हैं, हम उठ जाते। इतना बोलकर इप्सिता बिस्तर से उठकर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी और उटर दोनों ही उठकर अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे। दोपहर के 12 बजे थे, तभी उनके रूम का दरवाजा किसी ने नॉक किया। उदय उठने जा ही रहा था कि तभी नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए आप, हम जाते हैं। इतना बोलकर वो उठी और दरवाजे की तरफ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने की तरफ देखकर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर तेज आवाज में पूछा, क्या बात है नंदिनी, कौन है? नंदिनी इससे पहले कि कुछ बोल पाती तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, उदय बेटा। उदय ने जैसे ही ये आवाज सुनी वो सोफे से उठकर खड़ा हुआ और सीधे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। नंदिनी ने उदय की तरफ देखा, उदय काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो सामने की तरफ देखते हुए बोला, नंदिनी दरवाजा बंद कर दो। उदय के इतना बोलने पर नंदिनी उसके बगल में आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ? नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उदय ने कहा, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? नंदिनी ने सामने दरवाजे की तरफ देखा और उदय गुस्से से सामने की तरफ देख रहा था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उदय के मम्मी पापा खड़े थे। तभी नंदिनी ने कहा, अंकल आंटी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नंदिनी की ये बात सुनते ही उदय की मॉम अंदर की तरफ आई और उन्होंने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नंदिनी बेटा हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की थी, हम अपनी गलती की माफी मांगने के लिए यहाँ आए हैं। नंदिनी उनकी बात सुनकर थोड़ी सी हैरान हो गई और उदय की तरफ देखने लगी। उदय ने अपने मॉम डैड की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तभी नंदिनी ने उदय की मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे आंटी क्या कर रही हैं आप, ऐसा मत बोलिए, प्लीज आप लोग पहले अंदर आइए।
उदय ने जैसे ही नंदिनी की बात सुनी वो नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा आपने नंदिनी? नंदिनी ने उदय का हाथ पकड़ा और उसे साइड में ले जाते हुए बोली, कब तक नाराज रहेंगे आप उनसे, और वैसे भी देखिए ना वो लोग कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, प्लीज एक बार उनसे बात करके तो देखिए। उदय नंदिनी को घूर कर देख रहा था कि तभी नंदिनी ने बड़े प्यार से उदय को समझाया और उसके हाथ को हल्के से रब हुए कहा, प्लीज मेरे लिए एक बार उनसे बात कर लीजिए, कम से कम सुन तो लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। उदय ने नंदिनी की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम इतनी अच्छी हो लेकिन ये लोग ये डिजर्व नहीं करते। नंदिनी ने उदय का हाथ हल्के से दबाते हुए कहा, प्लीज एक बार उनकी बात सुन लीजिए। नंदिनी उदय को समझ रही थी और उदय के मम्मी पापा अंदर आए और वो सामने आकर खड़े हो गए। तभी नंदिनी ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, बैठिए अंकल, बैठिए आंटी। नंदिनी के मुंह से अंकल आंटी सुनकर उदय की मम्मी ने कहा, तुम हमें अंकल आंटी क्यों कह रही हो? तुम हमारे उदय की पत्नी हो तो उस रिश्ते से हम भी तुम्हारे मम्मी पापा हुए, प्लीज हमें आंटी अंकल मत बोलो। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उदय अपनी मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर उनको घूरते हुए देखने लगा। उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए नाम में अपना सिर हिलाया। तभी उदय के पापा उसके पास आए और उन्होंने कहा, हम जानते हैं उदय आप अभी भी हमसे बहुत नाराज हैं और आपका नाराज होना जायज भी है, क्योंकि हमने शायद आपके और नंदिनी के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, हमें आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद हमारा ईगो हमारे बीच में आ गया और हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। हमारी बेटी और आप, जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे थे, जब वही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हमें इन सब चीज़ों का क्या ही फायदा। उदय अपने पापा की तरफ देख रहा था, उनके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। टू बी कंटिन्यूड।